पृष्ठ संख्या 38, मीरा की कविता और मुक्ति की चेतना। विद्वान लोग समझते हैं कि वह साहित्य की व्याख्या और परंपरा की पहचान का काम करते हैं। यह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी-कभी विशेष ऐतिहासिक स्थितियों और सामाजिक वास्तविकताओं का सामना करती हुई जनता की संस्कृति, परंपरा और साहित्य की पहचान का विवेक विकसित करती है। वह विवेक विकल्पों के बीच चुनाव में मदद करता है। यदि हम इस व्यापक प्रक्रिया को समझने के लिए भक्ति काव्य के साथ जनचेतना के संबंध पर ध्यान दें, तो उस प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। यह सब जानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय जनसंस्कृति के जागरण का आंदोलन है, जिसका पहले की संस्कृति, परंपरा और कविता से गहरा संबंध है, और बाद की संस्कृति और परंपरा और कविता के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब इस देश की जनता के सामने ऐसी ऐतिहासिक स्थितियां आती हैं जो विकल्पों के बीच चुनाव की चुनौती खड़ी करती हैं, तब जनता भक्ति आंदोलन के कवियों की ओर देखती है। ऐसी स्थितियों में विद्वान लोग विचारों की विदेशी सहायता से काम चला लेते हैं, लेकिन साधारण जनता तो अपने भक्त कवियों से ही कुछ आशा करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस देश में अनेक जन आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलनों को भक्त कवियों की याद आती रही है और उन्हें उनसे शक्ति भी मिलती रही है। जब महाराष्ट्र में दलितों ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के प्रति विद्रोह किया, तब उन्हें मराठी के भक्त कवि नामदेव, तुकाराम और चोखामेला आदि से प्रेरणा मिली और शक्ति भी। हिंदी क्षेत्र का दलित आंदोलन कबीर और रैदास के विचारों से प्रभावित होता रहा है। इधर जब से सांप्रदायिकता की महामारी फैली है, तब से कबीरदास का महत्व साधारण जनता के साथ साथ विद्वानों की भी समझ में आने लगा है। सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में प्रेरणा का अच्छे स्रोत है भक्त कवियों की कविता। हिंदी क्षेत्र में अभी सामंती मूल्यों और रूढ़ियों का जितना अधिक प्रभाव है, उतना देश के अन्य भागों में शायद ही हो। इसलिए यहाँ स्त्रियों का जैसा शोषण, दमन और उत्पीड़न है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हत्या और आत्महत्या से बचा स्त्री, पृष्ठ संख्या 39, जीवन आग के दरिया से गुजरने के समान है। इस पराधीनता से स्त्रियों की मुक्ति का जो आंदोलन हिंदी क्षेत्र में अब चल रहा है, वह मीराबाई के जीवन और काव्य के विद्रोही स्वरों की पहचान रहा है। मीरा के काव्य में राजसत्ता, पुरुषसत्ता, लोक रूढ़ि और कुलीनता के विरुद्ध विद्रोह का स्वर जैसा प्रखर है, वैसा उस काल के किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं है। राजस्थान में दिवराला के सती कांड के बाद उस नृशंस सामंती प्रथा के विरुद्ध जो आवाज उठी और आंदोलन चला, उसमें मीराबाई को बार बार याद किया गया। यह स्वाभाविक था और जरूरी भी। आज भी भारतीय नारी को गुलाम बनाए रखने में राजसत्ता, पुरुषसत्ता, लोक रूढ़ि और कुल कान की बहुत बड़ी भूमिका है। मीरा के जीवन और काव्य से इन चारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। हिंदी आलोचना में मीराबाई के वास्तविक महत्व की खोज और पहचान अभी बाकी है। अनेक आलोचक तो उन्हें भक्तिकाल के बड़े कवियों में गिनने के लिए भी तैयार नहीं है। जब इस देश में नारी स्वाधीनता का आंदोलन पूरी तरह विकसित होगा, वह शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचेगा और भारत का स्त्री समुदाय सचमुच स्वतंत्र होगा, तब मीराबाई हिंदी की नहीं गुजराती जनता के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय होंगी। इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि जैसे विद्यापति हिंदी क्षेत्र को बंगाल से जोड़ते हैं, वैसे ही मीराबाई गुजरात से। बंगाल में जितना महत्व विद्यापति का है, उससे अधिक गुजरात में मीराबाई का है। हिंदी भाषी जनता ने अपने जीवन संघर्ष और सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया में भक्त कवियों का महत्व पहचाना है और उनकी कविता के संग्रह त्याग का विवेक विकसित किया है। क्या वह विवेक तर्क युद्ध में लगे आलोचकों की राय से कम महत्व का है? क्या वह आलोचकों के किसी काम का नहीं? क्या भक्ति काव्य संबंधी आलोचनात्मक चेतना के विकास में उस विवेक की कोई भूमिका नहीं है? भक्ति काल के कवियों के बीच मीरा के विशेष महत्व की पहचान करनी हो तो स्त्री के बारे में भी सभी भक्त कवियों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक मूल्यांकन उपयोगी होगा। स्त्री के बारे में सभी भक्त कवियों के विचार एक से नहीं हैं। यद्यपि कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर है, लेकिन उनके स्त्री संबंधी विचारों पर उस युग की गहरी छाया है। वह कहते हैं, नारी कुंड नरक का बिरला थामे बाग, कोई साधु जन उबरे सब जग मुंह वाला। सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वास संबंधी कबीर के विचारों से तुलसीदास असहमत हैं, लेकिन स्त्री के बारे में दोनों की राय लगभग एक जैसी है। तुलसीदास भी स्त्री को अवगुणों की खान और बुराइयों की जड़ समझते हैं। वह यह भी कहते हैं कि पति की सेवा ब्रैकेट चाहे पति जैसा भी हो ब्रैकेट बंद स्त्री का धर्म है। पृष्ठ संख्या 40। सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहाए। परंतु तुलसीदास स्त्री की पराधीनता की पीड़ा को भी पहचानते हैं। कतविध सजी नारी जग माही पराधीन सपन्यों सुख नाहीं। पर साथ ही वह स्त्री की स्वतंत्रता को खतरनाक भी समझते हैं। जिमि स्वतंत्र भय विगर ही नारी। कबीर और जायसी सती प्रथा को महामंडित करते हैं। इस तरह कबीर जायसी और तुलसीदास के काव्य में स्त्री सामंती रूढ़ियों में जकड़ी हुई दिखलाई पड़ती है, लेकिन सूरदास के काव्य में स्त्री का सहज स्वतंत्र और तेजस्वी रूप मिलता है, जो प्रेम में लोक और वेद के किसी बंधन को नहीं मानता। स्त्री के बारे में मीरा का दृष्टिकोण बाकी भक्त कवियों से एकदम अलग है। उनकी कविता में एक ओर सामंती समाज में स्त्री की पराधीनता और यातना का बोध है, दूसरी ओर उस व्यवस्था के बंधनों का पूरी तरह निषेध और उससे स्वतंत्रता के लिए दीवानगी की हद तक संघर्ष भी है। उस युग में एक स्त्री के लिए ऐसा संघर्ष अत्यंत कठिन था, लेकिन मीरा ने अपने सत्व की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया। वह राठौड़ कुल की बेटी और सिसोदिया राजकुल की बहू थी, जहाँ सती प्रथा का चलन था। मीरा विधवा होने के बाद उनकी रीति और लोक की रूढ़ि के अनुसार सती नहीं हुई। वह लगातार लांछन अपमान और यातना सहती हुई कृष्ण भक्त बनी। उन्होंने निर्भय होकर भ्रामक युग धर्म और लोक भय का सामना करते हुए स्पष्ट कहा, भजन कर सया सती न हो सया मन मोह्यो घर नामी। उस युग में किसी स्त्री को भक्ति भी सहज सुलभ ना थी, क्योंकि स्त्री को भक्त रूप में स्वीकार करने के लिए व्यापक समाज की कौन कहे, साधु समाज भी तैयार ना था। मीरा के बारे में प्रचलित विभिन्न प्रवादों से यही संकेत मिलता है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के भक्तों का गुणगान किया गया है, लेकिन उसमें मीरा बाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां भी दी गई हैं। मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार है और प्रत्युत्तर भी। मीरा की कविता में मुक्ति की चेतना प्रेम के माध्यम से व्यक्त हुई है। प्रेम संपूर्ण भक्ति काव्य का केंद्रीय भाव है। विभिन्न भक्त कवियों ने प्रेम के विशिष्ट स्वरूप की अभिव्यक्ति की है, लेकिन मीराबाई का प्रेम सबसे अधिक सहज उत्कट और विद्रोही है। उनको प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए किसी बिचवई की जरूरत नहीं है, न कबीर की तरह रूपक की, न जायसी की तरह लोककथा की और न सूर की तरह गोपियों की। पृष्ठ संख्या 41। वहाँ सीधा और प्रत्यक्ष प्रेम निवेदन है, निर्भय और निर्द्वंद आत्म अभिव्यक्ति के रूप में। वैसे तो कबीर जायसी और सूर के लिए भी प्रेम का मार्ग सुगम ना था, लेकिन मीरा को अपने हृदय के विवेक की रक्षा के लिए जिस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, उससे भक्तिकाल के किसी दूसरे कवि को नहीं। मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की, सीधे पारिवारिक और सामाजिक जीवन की चुनौतियां एवं कठिनाइयां थी। उस पुरुष प्रधान सामंती समाज में एक स्त्री, वह भी राठौड़ राजपूत कुल की बेटी और मेवाड़ के महाराणा परिवार की बहू, ऊपर से विधवा, यही था मीरा का अपना लोक। उसके धर्म और उसमें स्त्री की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। उसके विरुद्ध विद्रोह की कल्पना भी कठिन है। मीरा ने उस आतंककारी लोक और उसके भयावह धर्म के विरुद्ध खुला विद्रोह किया, जिसका साक्षी है उनका जीवन और काव्य। मीरा का विद्रोह अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं है। वे अपने संघर्ष की परिस्थितियों के बारे में पूरी तरह सजग हैं। विरोधी शक्तियों के खूंखार स्वभाव और उनकी स्थिति की पहचान के बाद ही उन्होंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा तनकी आस कबहु नहीं कीनो ज्यों रण माही सूरो इन्वर्टेड कॉमा बन। उनका संघर्ष सचमुच असाधारण है। जीवन की बाजी लगाकर लड़ा जाने वाला एक युद्ध। उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत है संकल्प। संकल्प के पीछे प्रेम में अटूट आस्था का बल है। तभी तो वह विरोधियों को चुनौती देती हुई घोषणा करती हैं, लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाए जस पाणी अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौराणी। यह चुनौती उन लोगों को है जो लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर मीरा की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते थे। और असफल होने पर खींचकर उन्हें बावरी, दीवानी और कुलनाशी आदि कहते थे। अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बौराणी। मैं आरंभ का व्यंग्य बात की विडंबना से मिलकर जो प्रभाव पैदा करता है, वह चुनौती के स्वर को अधिक अर्थपूर्ण और धारदार बना देता है। यहाँ एक सजग स्त्री स्वर सुनाई देता है, जिसमें आक्रोश की अनुगूंज है, केवल पीड़ित की चीख या पुकार नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प और आस्था के साथ अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील अबला भी पुरुष प्रभुत्व के लिए चुनौती बन सकती है। अपने प्रेम की रक्षा के लिए मीरा का संघर्ष चौतरफा है। उनके विरोध में राणा की राजसत्ता है और सिसोदिया कुल की मर्यादा, कुल कान भी। पुरुष प्रभुत्व की सत्ता है और सामंती समाज की रूढ़ियाँ, लोकलाज भी। इनमें से कोई भी एक, पृष्ठ संख्या 42, किसी स्त्री की हत्या में सक्षम है। फिर जहाँ चारों एकत्र हों, वहाँ आतंक का क्या कहना। मीरा ने इन सब का सामना किया और कभी कभी आगे बढ़कर उन्हें ललकारा भी है। सिसो दयो रूठ्यो मारो, काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माई। राणा जी रूठिया बारो देश रखासी, हरे रूठिया कुम्हलास्या हो माई। लोकलाज की काण न मानू, निर्भय निषाण घुरास्या हो माई। मीरा की सामाजिक सजगता का एक प्रमाण यह भी है कि उन्होंने जहाँ भी अपने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी है, वहाँ सखी या माँ को संबोधित किया है, भाई या पिता को नहीं। प्रेम स्वभाव से ही सत्ता विरोधी और स्वतंत्र होता है। वह अपने प्रिय को छोड़कर और किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता। सत्ता से प्रेम के संघर्ष की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज में प्रेम की कहानी है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रेम की कविता में विरोधी सत्ता हमेशा सामने हो, वह कहीं प्रत्यक्ष होती है, कहीं परोक्ष भी। प्रेम ही मीरा के सामाजिक संघर्ष का साधन है और साध्य भी। यद्यपि कबीर भी कहते हैं कि प्रेम का घर खाला का घर नहीं है, लेकिन मीरा की प्रेम साधना कबीर से भी अधिक कठिन है। दुर्गम प्रेम पथ का उनका अनुभव ठीक ही कहता है। लगन को नाव न लीजे री भोली, लगन लगी को पड़ो ही न्यारो, पाँव धरत तन छी जाए, जे तू लगन लगाई चाहे शीश को आसन की जाए। यह कोई काव्योक्ति नहीं, मीरा के जीवन की सच्चाई है। मीरा के प्रेम में आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास का अनुपम मेल है। उनका आत्मसमर्पण आत्मविसर्जन नहीं है, वहाँ प्रेम में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण है तो सामंती शक्तियों के विरोध की दृढ़ता भी है। कृष्ण से मीरा कहती हैं, माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, ब्रैकेट बंद। तो दूसरी ओर राणा से कहती हैं, मैं तो राणा जी माने इसड़ा लागो, ज्यों रिच्छन में कैर, ब्रैकेट बंद। वह गोविंद के सामने आत्मसमर्पण करती हैं और उससे शक्ति अर्जित करती हुई सामंती शक्तियों का सामना करती हैं। मीरा कभी कभी राजसत्ता और उसकी शक्ति की सीमा बताने के लिए उसके सामने ईश्वर की सत्ता और शक्ति को रख देती हैं। पृष्ठ संख्या 43, राणा जी रूठियाँ वारो देश रखासी, हरी रूठियाँ कुमलास्या हो माई। या राजा रूठई नगरी राखे, हरी रूठियाँ कहाँ जाड़ा। इस तरह वह सामंती सत्ता की तुच्छता सामने लाकर उसके आतंक, भय या प्रलोभन से मुक्ति की प्रेरणा देती हैं और अपने प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं। मीरा का विद्रोह एक विकल्पहीन व्यवस्था में अपनी स्वतंत्रता के लिए विकल्प की खोज का संघर्ष भी है। मीरा की कविता में सामंती समाज और उसकी संस्कृति की जकड़न से बेचैन स्त्री स्वर की मुखर अभिव्यक्ति है। उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही सामाजिक भी। मीरा का जीवन संघर्ष उनके प्रेम का विद्रोही स्वरूप और उनकी कविता में स्त्री स्वर की सामाजिक सजगता भक्ति आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसकी ओर हिंदी आलोचना में अब ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन नाभादास ने भक्तमाल में मीरा की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद ही उनके प्रेम के विद्रोही स्वरूप, उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, उनके स्वभाव की निर्भयता और उनके संघर्ष के महत्व को पहचानते हुए लिखा था। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलि जुगहि दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो दुष्टि न दोष बिचारे मृत्यु को उत्तम कियो बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो भक्ति निशान बजाई कै काहू ते नाहिन लजी लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी।